लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है मंगोलिया में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। पोप फ्रांसिस अपनी 4 दिवसीय प्रेरित यात्रा समाप्त कर आज वैटिकन लौट रहे हैं। अपनी 43वीं प्रेरित यात्रा पर वे 1 सितंबर को मंगोलिया पहुंचे थे। मंगोलिया में अपनी प्रेरित यात्रा के अंतिम दिन संत पापा ने प्रेरित अध्यक्षालय में व्यक्तिगत रूप से मिस्सा बलिदान अर्पित किया और उलानबातर के प्रेरित अध्यक्ष कार्डिनल जॉर्जो मारेंगो और उनके स्टाफ को धन्यवाद अर्पित किया जो पूरी यात्रा में उनके साथ रहे। कार्डिनल मारेंगो को धन्यवाद के चिन्ह स्वरूप संत पापा ने उन्हें एक स्वर्ण प्याला भेंट किए और एक पिता का चिन्ह प्रकट करते हुए उन्हें संत जोसेफ की प्रतिमा अर्पित किया। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में बतलाया गया है कि मूर्ति कला में संत जोसेफ को प्रभु के संरक्षक के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें संत जोसेफ अपने बाएं हाथ बालक मुक्तिदाता को आशीष देने की मुद्रा में रखे हैं, जबकि अपने दाएं हाथ से डंडा पकड़े हुए हैं। एपोक्रिफा के ग्रंथ अनुसार उस समय चमत्कारिक रूप से लिली फूल खिल गया था जब यरूशलेम के मंदिर की याजकों को यूदा के अविवाहित जनजाति के वंशजों में से मरियम के पति का चयन करना था। पोप फ्रांसिस की मंगोलिया यात्रा का अंतिम पड़ाव करुणा का निवास था, जो गरीबों, शरणार्थियों, घरेलू हिंसा के शिकार लोगों एवं बेघर व्यक्तियों के लिए कलीसिया संचालित आश्रय और चिकित्सालय है। यह उलानबातर में एक अप्रयुक्त स्कूल परिसर में स्थित है, जहां कभी सेंट पॉल ऑफ चार्टर्स ऑफ हॉस्पिटल्स धर्म बहने थी। स्थानीय कलीसिया और उलानबातर के प्रेरित अध्यक्ष कार्डिनल जॉर्जो मारेंगो के प्रयासों तथा परमधम पीटी ऑस्ट्रेलिया मिशन सोसाइटी के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। इस एक बेसमेंट के साथ 3 मंजिला इमारत में कई व्यक्तिगत कमरे और एक हॉल भी है, जहां अतिथि एक साथ आकर आपस में भाईचारा की भावना व्यक्त कर सकते हैं। इसे गरीबों के लिए अस्थायी शेल्टर के रूप में बदल दिया गया है और बेघर एवं घरेलू हिंसा के शिकार लोगों को मदद करने हेतु इसमें क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप्रवासियों को अस्थायी रूप से आश्रय प्रदान की जाती है जो शहर से आते और जिन्हें सहायता की जरूरत होती है। करुणा के निवास के संचालक जिला में स्वास्थ्य सुविधाओं, स्थानीय पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करते हैं। संत पापा ने वहां करुणा के निवास का उद्घाटन कर उदार कार्यों को प्रोत्साहित किया तथा मंगोलिया की कलीसिया को आर्थिक रूप से कठिनाइयों का सामना करने और हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोगों की देखभाल करने हेतु अपना आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा, भला काम करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, बल्कि यह उन साधारण लोगों का काम है जो अपना समय, कुशलता और हृदय दूसरों की चिंता में समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसियों के प्रति उदार सेवा ने ईश्वर की प्रजा के इस जीवंत हिस्से को इसकी शुरुआत से ही प्रतिष्ठित किया है। संत पापा ने इसे कलीसिया की परिभाषा बतलाते हुए कहा,
In queste due parole c'è la definizione della Chiesa, chiamata a essere dimora, accogliente e commuove.
दया का निवास उन दो शब्दों में कलीसिया की परिभाषा है, जिससे एक ऐसा घर कहा जाता है जहां सभी का स्वागत होता और सभी प्रेम का अनुभव करते हैं। जहां पिता का कोमल स्नेह लोगों के दिलों को प्रेरित और प्रभावित करता है, जो उसके घर में भाई बहन बनना चाहते हैं।
संत पापा फ्रांसिस ने मंगोलिया की प्रेरितिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर सेवा कार्य में संलग्न संघों के सदस्यों से भेंट की और उलान बातर में करुणा निवास का उद्घाटन किया। जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, इन शब्दों के द्वारा आपके आतिथ्य और साक्ष्य को संक्षेपित किया जा सकता है। ये वचन हमें ईश्वर की उपस्थिति को दुनिया में देखने और उनके संग अनंत निवास और खुशी में प्रवेश करने हेतु मदद करते हैं। कलिस्सा ने शुरू से ही इन वचनों को गंभीरता से लिया है और अपने कार्यों के माध्यम अपनी मूलभूत छवि को व्यक्त किया है। कलिस्सा की नींव को हम चार स्तंभों में पाते हैं, जिसे प्रारंभिक कलिस्सा प्रेरित चरित्र की पुस्तिका में हमारे लिए व्यक्त करती है, एकता, धर्म विधि, सेवा और साक्ष्य। सदियों बीतने के बाद भी मंगोलिया की छोटी कलिस्सा में इन गुणों को देखना हमें आश्चर्यचकित करता है। ये गेर के चार स्तंभों की भांति हैं, जो संरचना को खड़ा रखती और हमें अंदर आने हेतु स्थान प्रदान करती है। संत पापा ने उद्घाटन किए गए करुणा निवास का जिक्र करते हुए कहा,
è un'espressione concreta di quel prendersi cura dell'altro in cui i cristiani si riconoscono.
यह हमारे लिए ख्रिस्तीय समुदाय की मुख्य निशानी है, क्योंकि यहाँ हम दूसरों को खुले रूप में स्वागत करते हुए अतिथि सत्कार करते हैं, जहाँ से ख्रिस्त की खुशबू फैलती है। हमारे पड़ोसियों की उदारतापूर्ण सेवा, उनके स्वास्थ्य, जरूरतों की चिंता, शिक्षा और संस्कृति हमें ईश्वरीय प्रजा के रूप में विशेष बनाता है। सन 1990 में प्रथम प्रेरितों का उलन बातर में आना उन्हें करुणा के कार्य का एहसास दिलाया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने परित्यक्त बच्चों, आश्रयहीन भाई बहनों, बीमारों, असक्षम लोगों, कैदियों और अन्यों की देखरेख की, जिन्हें सेवा की जरूरत थी। संत पापा ने कहा कि आज हम एक पेड़ को विकसित पाते हैं, जिसकी टहनियां फैली हुई हैं, जिसके फलों को हम विभिन्न तरह के करुणामय कार्यों में देख सकते हैं। यह कार्य विभिन्न तरह के प्रेरितिक संस्थानों द्वारा संचालित किया जाता है, जो लोगों के बीच ख्याति प्राप्त है। वास्तव में मंगोलिया की सरकार ने ख्रिस्तीय प्रेरितिक संस्थानों की सेवा की आवश्यकता को अनुभव किया है। उन्होंने सेवा के कार्य में शामिल सभी लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हुए कहा कि यह परियोजना लगातार प्रेरितिक कार्यों में जुड़े समर्पित लोगों को विभिन्न देशों से आकर्षित करती है, जो अपने ज्ञान, अनुभव, संपदाओं और विशेषकर प्रेम को सेवा स्वरूप मंगोलिया समाज संग साझा करने आते हैं। संत पापा ने करुणा निवास की प्रशंसा करते हुए कहा,
della misericordia si propone come punto di riferimento per una molteplicità di interventi caritativi.
यह विविध करुणा के कार्यों का संदर्भ स्थल है। उन्होंने इसके नाम की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए कहा, ये दो शब्द कलिसा को परिभाषित करते हैं, जो सभों का निवास स्थल है, जहां लोग ईश्वर के गहरे प्रेम का अनुभव भाई बहनों के रूप में कर सकते हैं, जो हृदयों को उद्वेलित और प्रभावित करता है। संत पापा ने कहा, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस परियोजना में सहयोग करते हुए निष्ठापूर्ण ढंग से इसकी व्यक्तिगत और संसाधनों की देखरेख करेंगे। इस परियोजना की सफलता हेतु स्वयं सेवी लोगों की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि आज भी बहुत से उदार हृदय लोग हैं, जो जरूरतमंद लोगों की सेवा हेतु स्वेच्छा से अपने को समर्पित करते हैं। यह पड़ोसियों के प्रति उनके प्रेम को प्रकट करता है। यह वह सेवा है जिसे यीशु ने अपने शिष्यों को सिखलाया, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। इस तरह का कार्य अपने में व्यर्थ प्रतीत होता है, लेकिन जब हम त्याग में अपने समय और प्रयास को बिना किसी चीज की आशा किए देते हैं, तो वह अपने में कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वह एक मूल्यवान निधि बन जाता है। वास्तव में उदारता
हमारे हृदयों को बोझहीन बनाता, हमारे हृदयों के घावों की चंगाई करता, हमें ईश्वर के निकट लाता, हमारी खुशी का कारण बनता और हमें आंतरिक रूप में युवा बनाए रखता है। संत पापा ने तकनीकी जीवन स्तर में विकास और सामाजिक कल्याण के साधनों को सभी सेवाओं के लिए अपर्याप्त बतलाते हुए कहा, इसके लिए हमें स्वयं सेवियों की जरूरत है जो प्रेम से प्रेरित होकर दूसरों की सेवा हेतु अपने को समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश का विकास अर्थव्यवस्था और हथियारों की मायावी शक्ति के आधार पर आंकी नहीं जाती है, अपितु यह स्वास्थ्य, शिक्षा और देशवासियों के संपूर्ण विकास पर होता है। इस आधार पर संत पापा ने मंगोलिया वासियों की उदारता की प्रशंसा करते हुए उन्हें स्वयंसेवी कार्यों में निरंतर हाथ बटाने का प्रोत्साहन दिया। अपने संबोधन के अंत में संत पापा ने कुछ मिथकों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि केवल धन के द्वारा ही स्वयंसेवी कार्य संभव है, वास्तव में यह एक भ्रम है। इसके विपरीत लोग जो साधारण जीवन व्यतीत करते, वे अपने समय गुण को उदारता में दूसरों की सेवा हेतु अर्पित करते हैं।
La Chiesa va avanti non per proselitismo, va avanti per attrazione. I cristiani riconoscono chi è nel bisogno e fanno il possibile per alleviarne le sofferenze.
कलीसिया धर्म परिवर्तन से नहीं अपितु अपने आकर्षण से आगे बढ़ती है। केवल धन महत्वपूर्ण है, इस विचार को उन्होंने तीसरी मिथक सोच कही। अतः हम केवल वेतनधारियों को ही अपने कार्यों का अंग न बनाएं। निश्चित रूप में करुणा के कार्य व्यवसायिकता की मांग करती है, लेकिन सेवा के कार्य व्यवसाय न बने। संत पापा ने कहा कि सच्चे अर्थ में भलाई करने हेतु हृदय से अच्छा होना जरूरी है, जिसके फलस्वरूप हम दूसरों की भलाई हेतु अपने को समर्पित करते हैं।
Impegnarsi solo dietro remunerazione non è vero amore. Solo l'amore vince l'egoismo e fa andare avanti il mondo.
वेतन के लिए समर्पण सच्चा प्रेम नहीं है। हम केवल प्रेम के माध्यम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ सकते और दुनिया को आगे ले सकते हैं।
उलन पातर के करुणा निवास के निदेशक अंड्रू त्रान ने कहा कि पोप की आशीष के साथ हम गरीबों के लिए उनकी इच्छा और उनके प्रेम को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, करुणा का निवास परियोजना एक मकान नहीं, एक परिवार का निर्माण करेगी, एक सच्चा घर उन सभी लोगों के लिए जो न केवल छत और गर्म भोजन, न सिर्फ बाथरूम और लॉन्ड्री, बल्कि एक परिवार पाएंगे जो उन्हें स्नेह और सहायता प्रदान करेगा ताकि वे अपने पैरों पर वापस खड़े हो सकें। शेल्टर होम में उद्घाटन समारोह में उपस्थित वैटिकन के पत्रकारों से बातें करते हुए निदेशक ब्रदर ने बतलाया कि ठंडक के महीने ज्यादा ही कठोर होते हैं और ऐसे लोग जो सड़कों पर जिंदगी गुजारते या जो मदद खोजने के लिए मजबूर होते, ऐसे लोगों के लिए कार्तिक मिशनरी हमेशा तैयार रहते हैं। वे अपनी क्षमता एवं लोगों की जरूरत के अनुसार हरेक के लिए द्वार खोलते हैं। उनमें से कुछ लोग अत्यंत गरीब होते और कुछ अपने परिवार से बिछुड़ गए हैं। हो सकता है कि उन्होंने अतीत में गलती की हो, शराब की लत में फंस गए हों अथवा घरेलू हिंसा के शिकार हों। उन्होंने कहा, हम उन्हें पुनः जोड़ने की कोशिश करते हैं, समाज में पुनः लाने का प्रयास करते हैं, विशेषकर बूढ़ों, बच्चों और घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं को। हम उन लोगों की मदद करते हैं जो शराबी हैं, उन्हें सुधार करने में मदद करते हैं ताकि वे समाज में वापस जा सकें। निदेशक ने बतलाया कि मिशनरी उन लोगों की भी मदद करते हैं जिन्होंने अपनी पहचान पत्र खो दिया है और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा हासिल नहीं कर सकते ताकि वे पुनः अपना कागजात बना सकें एवं सामान्य स्थिति में आ सकें। ब्रदर ने कहा, करुणा निवास छोटा है, लेकिन मिशनरी सभी का स्वागत करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि निश्चय ही यह हमारे आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि यह 100% चैरिटेबल कार्य पर निर्भर है। यदि हमारे पास अधिक साधन होते हैं तो हम अधिक लोगों की मदद करते हैं। एक पत्रकार के पूछने पर कि पोप फ्रांसिस के आज यहाँ आने का क्या अर्थ है, ब्रदर एंड्रू ने कहा, पोप गरीबों के प्रति स्नेह और सहानुभूति के कारण यहाँ आए थे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इस मकान, इस परियोजना को आशीष दी। उनकी इस आशीष से हम गरीबों के प्रति उनके स्नेह और उनकी इच्छा को जारी रखेंगे। करुणा का निवास, जिसका उद्घाटन 4 सितंबर को हुआ, पहले से ही सेवा और सहायता प्रदान कर रहा है। मंगोलिया में प्रेरितिक यात्रा के दौरान संत पाप फ्रांसिस ने चीनी वासियों को अपना स्नेहिल अभिवादन प्रेषित करते हुए उन्हें शुभकामनाएं प्रदान की हैं। मंगोलिया की राजधानी उलान बातर में यूखरिस्त बलिदान की समाप्ति के उपरांत संत पापा ने चीनी ख्रिस्तियों का अभिवादन करते हुए उन्हें अच्छा ख्रिस्ते एवं अच्छा नागरिक बने रहने का आह्वान किया। संत पापा ने मंगोलिया की राजधानी में मंगोलिया छोटे ख्रिस्त समुदाय के संग मिसा बलिदान अर्पित किया और प्रभु भोज की समाप्ति के उपरांत उन्होंने एक क्षण के लिए चीनी धर्म अध्यक्षों को अपने संग मंच साझा करने का निमंत्रण दिया। संत पापा ने इस दौरान सेवानिवृत्त हांगकांग के धर्माध्यक्ष जोन तेंग होन और नवनियुक्त कार्डिनल स्टीफन चाओ साओ यान का अभिवादन किया। उनके हाथों को पकड़ते हुए संत पापा फ्रांसिस ने नेक चीनी वासियों को अपना स्नेह प्रेषित किया और कहा, सबों को शुभकामनाएं। संत पापा ने उन्हें सदैव आगे बढ़ने और विकास करने की शुभकामनाएं दी। चीनी के विश्वासी समुदाय को संबोधित करते हुए संत पापा ने कहा, आप अच्छे ख्रिस्ते और अच्छे नागरिक बने रहें। ये दो धर्माध्यक्ष भाई, एक सेवानिवृत्त और दूसरे हांगकांग के वर्तमान धर्माध्यक्ष, आपकी उपस्थिति में मैं नेक चीनी वासियों को अपनी स्नेहमयी शुभकामनाएं भेजना चाहता हूँ। मैं आप में से हर एक को शुभकामनाएं देता हूँ। आप प्रगति करें, सदैव विकास करें और मैं चीन के ख्रिस्तों से आग्रह करता हूँ कि आप अच्छे ख्रिस्ते और अच्छे नागरिक बने रहें। धन्यवाद।
E buoni cittadini a tutti, auguri. Thank you. Un gesuita e un salesiano.
सोमवार को मंगोलिया की प्रेरितिक यात्रा समाप्त कर पोप फ्रांसिस एवं वैटिकन प्रतिनिधि उलान बातर के चंगेज खां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रोम के लिए प्रस्थान किए। उन्होंने मंगोलिया के लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए ट्वीट में कहा, मंगोलिया के प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपकी मित्रता के उपहार के लिए धन्यवाद, जिसको मैंने इन दिनों पाया है। ईश्वर आपको आशीष प्रदान करें। आप सभी मेरे हृदय में हैं और मेरे हृदय में हमेशा बने रहेंगे। कृपया मुझे भी अपनी प्रार्थनाओं में और अपने मन में याद कीजिएगा। पोप फ्रांसिस रोम समय अनुसार सुबह 6:03 पर उलान बातर से प्रस्थान किए हैं और शाम 5 रोम के फ्यूमिचिनो हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।